ओम शांति। ये मौन तपस्या भक्तियों की मौसम चल रही है। इस मौसम में उस तपस्या की अनुभूति जो हमारे प्यारे बाबा ने इन स्थानों को अनुभूति स्थान बना दिया है और उसमें भी विशेष अरावली की ये पर्वतमाला, अरावली की ये श्रृंखला, ऐसा लगता है कि इस अरावली की श्रृंखला के जो पत्थर हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन साइलेंस में ले जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही शहरों से गाड़ियां, बसेस आती हैं, बैठते हैं, और पांडव भवन की ओर प्रस्थान करते हैं तो वो सारी विस्मृतियां होकर एक ही स्मृति रह जाती है, बाबा और तपस्या। वैसे भी अरावली की पहाड़ियां कई नदियों का उद्गम स्थान है। अगर इसका प्राचीन इतिहास पढ़े तो बहुत नदियां यहां से निकली हैं और भारत के कोने कोने में उन नदियों ने अपने पानी से सबको सींचा है, हरियाली की है। इन अरावली की पहाड़ियों में उनकी गोद में ये चैतन्य दिलवाड़ा, ये चैतन्य तपस्वी मूर्त आत्माएं और सबसे पहले जब सोच चलता है कि वंडरफुल हैं ये अरावली की पहाड़ियां जिनका दिल इतना विशाल है, जो भगवान को आवाहन किया, भगवान को स्वीकारा और भगवान ने इन्हें स्वीकार करके इनमें अपना स्थान बनाया और अपने बच्चों को बुला करके देवी देवता, राजकुमार राजकुमारियां, राजा महाराजा बना दिया। वैसे भी राजकोट प्रिंसली स्टेट मानी गई है। जब विदेशियों ने यहाँ राज्य किया तो ये प्रिंसली स्टेट के रूप में प्रसिद्ध थी और उस प्रिंसली स्टेट से आए हुए ऐसी आत्माओं का जो फिर भविष्य में राजा महाराजा राजकुमार राजकुमारियां बनने वाली हैं, उन सभी होवनहार देवताओं का सबसे पहले मैं इस मौन तपस्या भट्टी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। यही आश है कि वो मूर्तिकार जो हमें चाहता है, जो रंग वो भरना चाहता है इस भट्टी से, वो सारे ही रंग आप अपने में भर कर जाएं और ऐसी तपस्वी मूर्त आत्माएं बन करके जाएं जिनकी यादगार यहाँ जड़ दिलवाड़ा मंदिर में भी रखी हुई है। आज भट्टी का उद्घाटन दिन है। ऑफिशियली अभी हम भट्टी का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी पुराने हैं, सबसे पहले आज की इस भट्टी के प्रारंभ में हम अपनी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी से हम उनके विचार सुनेंगे। भट्टी का क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य से हमको ये तीन दिन चलना है, क्या उद्देश्य रखना है, आप अनुभवी आत्मा है। स्पेशली मैं सोचती हूँ कि ड्रामा में और बाबा ने आपको इस हेडक्वार्टर के लिए, जो कि पांडव भवन हमारा मुख्यालय कहा जाता है, उसके लिए चुना। जनरली जब भी बहनें समर्पित होती हैं तो बाबा उनको अनेक स्थानों पर भेजते हैं, लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड बहनें हैं जो हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर्स, विशेषकर पांडव भवन में उनका निवास है और यहाँ वो देश विदेश की अनेक आत्माओं की सेवाएं करते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। बंबई यूनिवर्सिटी से आप साइंस ग्रेजुएट हैं। 1969 में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1970 से करीब 5 साल तक आपने भारत के और नेपाल के अनेक स्थानों पर सेवाएं दी। उसके पश्चात 2 साल के लिए बाबा ने आपको अफ्रीकन कंट्रीज और मॉरिशियस में भेजा, वहां आपने अपनी सेवाएं दी और 76 से आप स्थायी रूप से मधुबन पांडव भवन में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, जब हम आते थे तब आप यहाँ ही होते थे, और विशेष करके आपका राजयोग शिविरों का आयोजन करने में, राजयोग शिविर कराने में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। शुरू से लेके जो राजयोग शिविर यहाँ पांडव भवन में हुआ करते थे, उस समय ज्ञान सरोवर और शांतिवन नहीं था, तब से आप यहाँ राजयोग शिविर कराते हैं। और हमने देखा है उनके साथ कि अनेक हाई प्रोफाइल आत्माएं भी यहाँ आती रही हैं और आज भी आती हैं, कि जिन्हें आप अपने योग शिविरों से उन्हें लाभान्वित करती हैं, और वो आत्माएं आगे चल करके अनेक स्थानों पर बाबा का बच्चा बन करके, बाबा की रेगुलर स्टूडेंट बन करके, स्टडी करके अपने आप को बनाते हैं। जो टीवी चैनल, आज तो हमारा पीएम टीवी चैनल एक 24 आवर्स टीवी ही हमारा पूरा चैनल ही है, लेकिन जिन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था, उन दिनों में जागरण टीवी, जी टीवी, सोनी पर, संस्कार पर, आस्था पर, आपके जीवन मूल्यों पर प्रवचन आया करते थे। मैं समझती हूँ शुरुआत शायद आप ही के प्रवचनों से हुई थी, रेगुलर आपके प्रवचन आते थे, क्योंकि आपका इंग्लिश, हिंदी और सिंधी जो आपकी मातृभाषा है, तीनों भाषाओं पर आपका बहुत प्रभुत्व है, और बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी विषय को स्पष्ट करना तो आपकी वो कला है, तो बाबा ने आपको उसके लिए चुना, आप उन सेवाओं में भी रहे। आज भी आपके प्रवचन, उनकी सीरीज वगैरह सब जगह उपलब्ध हैं, और विशेषकर जो हम योग का अभ्यास करते हैं, प्रारंभ में जब हम कोर्स कराते हैं, उसके बाद जो राजयोग का लेसन होता है, उसमें जो कमेंट्री से, हिंदी इंग्लिश कमेंट्री से हम योग का अभ्यास कराते हैं, तो वो आप ही की भाषा में, आप ही ने उसको, भले बाबा ने सिखाया है, लेकिन वो भी आपको एक सौभाग्य प्राप्त है। तो इस प्रकार से आपने अनेक सेवाएं की हैं, अनेक कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, जो चाहे माउंट आबू में होती हैं, अभी तो तीनों ही हमारे स्थानों पर वो चलता रहता है, विंग्स के कार्यक्रमों में, राजयोग शिविरों में, ऐसी जो हमारी रिफ्रेशर कोर्सेज, जो हमारी भट्टियां होती हैं, या टीचर्स के जो क्लासेस होते हैं, टीचर्स के जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, कुमारियों की जो ट्रेनिंग होती है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं तीनों ही स्थानों पर, उसमें आपका एक विशेष रोल रहता है सभी को आगे और ट्रेन करने में और सिखाने में और समझाने में। आपने पांचों ही महाद्वीपों में जाकर के अपनी सेवाएं दी हैं, लगभग 60 से भी अधिक देशों में आप गए हैं, हर वर्ष आप कुछ देशों का भ्रमण करते हैं सेवाओं के लिए, अनेक स्थानों पर जाकर आप सेवाएं दे रहे हैं, और विशेषकर, वैसे तो मैंने कहा हर विंग से आप जुड़े हैं, लेकिन विशेषकर से आप एजुकेशन विंग से भी जुड़े हुए हैं, उसके आप संयोजिका हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आज के अपने विषय पर, जो अमृत वेला, वरदानों का समय एवं भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य, इस विषय को लेकर आप अपने विचार हम सबसे शेयर करेंगे, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शिलूबेन जी।
थैंक यू राधाबेन। राधाबेन से भी परिचित हुए कि नहीं? राधाबेन अपना परिचय आपने दिया कि नहीं? नहीं, चलो बाद में लेना। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, दीदियां, मधुबन निवासी सबके तरफ से भी, आप सभी राजकोट और उसके आसपास के जितने भी सेवा केंद्र के गिने चुने भाई बहने हैं जो यहाँ भट्टी में आए हैं, तो उन सब की तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि है। प्यारे मम्मा बाबा दादियों की भी तपस्या भूमि है। यहाँ के वाइब्रेशन से सारे विश्व में फैलते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को यहाँ आकर्षित करते हैं। बहुत कुछ राधा बहन ने कहा, उसके लिए तो अभी मैं और आगे नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। पता नहीं कितनों के नाम गए होंगे दीदी के पास, हम जाएं भट्टी में, और उसमें से आप ही चुने गए। हो सकता है कि औरों के भी नाम होंगे, लेकिन लास्ट मिनट पर उनका किसी कारणवश कैंसिल हो गया और वो नहीं पहुंचे। और ऐसे भी होंगे जिनका नाम भी नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट में उनको चांस मिल गया, ऐसे भी है ना। लेकिन मधुबन में जो पहुंचे अवश्य वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। इस मधुबन तपोभूमि में आप योग, मौन योग तपस्या करने आए हैं, अथवा कहें भट्टी में पकने आए हैं। ये क्यों रखी गई है भट्टियां? क्योंकि समय धीरे धीरे बहुत नाजुक होता जा रहा है, वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है, चारों ओर तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, अनेक बगुलों के संग में आपको रहना पड़ता है, और आप सभी बाबा के हंस बच्चे, जो आज बाबा ने कहा राज ऋषि बच्चे, राज योगी बच्चे, उनके बीच में आपको रहना पड़ता है। जो बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय है दुनिया में, अकासुर बकासुर जरासंधी शिशुपाल हिरण्याक्ष राक्षस दिखाए हैं शास्त्रों में, पर है तो सब कलयुगी इंसान, और स्त्रियों में भी दिखाए सूपनखा पूतना, हाँ ये सब राक्षसनी शास्त्रों में दिखाए हैं। तो इन सब के बीच में भी आपको रहना पड़ता है। कई भाई बहने हम लोगों को कहते हैं, बहन जी जो हम लोग दुनिया में अनुभव करते हैं आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। सच है, हम कहाँ ना कह रहे हैं। हमारा भी ये सौभाग्य है कि उन सब से दूर हम बाबा की छत्र छाया में हैं। लेकिन आप सब धन्य हैं जरूर, क्योंकि इन सब के बीच में रहकर इन सब परिस्थितियों का आप सामना करते हैं और फिर भी विजयी होके निकलते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत आफरीन है। लेकिन और शक्ति भरने के लिए बाबा ने आपको मधुबन में भेजा है। ऐसे भी कई होंगे जो बहुत सालों से आते हैं, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन मधुबन में नहीं रहे हैं, क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना वही प्रोग्राम्स होते हैं, और शांतिवन में अधिक रहना होता है अभी, लेकिन मधुबन में कभी नहीं रहे हैं, परंतु आए हैं भट्टी में। तो जो पहली बार मधुबन में रहकर भट्टी कर रहे हैं वे हाथ उठाएं। देखो बहन सारे ही अधिकतर, हाँ अच्छा, और जो पहले रह चुके हैं मधुबन में वो हाथ उठाएं, गिने चुने। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। जो पुरानी है उनको तो बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि जीवन में कई पड़ाव देखे, कई ऊंचाई नीचाई देखी, लेकिन विजयी होके अभी भी सुरक्षित हैं। तो बाबा कहते ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जितने हैं वो सच्चे सोने के समान है, पर जो नहीं है उनको भी बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फास्ट। इसीलिए टू लेट नहीं आए हो, भले लेट का बोर्ड तो लग गया है पर टू लेट नहीं हो। और वो टू लेट का बोर्ड भी लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा, इसलिए उसके पहले पहुंच गए हो इसलिए मुबारक है। तो यहाँ मधुबन एक तपस्या का किला है, जैसे किले के अंदर गए दुश्मनों के वार से बच गए, तो इस किले में आप आए हो जहां माया आ नहीं सकती है, माया का वार हो नहीं सकता, तो बचे हुए तो हो ही। और ये ऐसा स्थान है जहां पर आप अपने अंदर बहुत शक्ति भर सकते हो। बाबा कई बार कहते हैं मधुबन है पावर हाउस, बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ आए हो। सागर का कंठा है, यहाँ से बादल भरने के लिए आए हो और फिर जाकर के बरसना है। तो इतनी शक्ति यहाँ अपने अंदर भर के जानी है, ताकि इस शक्ति का आप केवल अपने प्रति ही यूज न करें, पर जो भी आपके संपर्क में आए उनको भी अनुभव हो। तो इस मौन योग तपस्या भट्टी का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मौन, ये आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमको मौन में रहना है। रह सकेंगे मौन में? सहज होगा या मुश्किल होगा? क्या समझते हैं? सहज होगा, सही हा? थोड़ा थोड़ा मुश्किल नहीं? वैसे तो बाबा कहते हैं साइलेंस में रहना तो बहुत सहज है, परंतु आवाज में आना सहज हो गया है। तो जो आत्मा परम धाम में साइलेंस में ही रही है, वो यहाँ आकर के टॉकी बनती है, तो आवाज में आने का ही संस्कार हमारा इतना पक्का हो गया है जो मौन में रहना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा पूछते हैं आवाज में आना सहज है या शांत रहना सहज है, बाबा पूछते हैं ना मुरलियों में। लेकिन अक्सर करके यही सबका उत्तर है कि आवाज में आना सहज है। ऐसे है क्या कि नहीं? नहीं, चलो अच्छी बात है। तो ये हम आपसे अपेक्षा करें कि अगले 3 दिन बिल्कुल आवाज से परे होंगे, इसलिए आपको ये जैसे ही आप आए आपके गले में ये क्या कहेंगे विजय माला पहना दी पहले से गले में। किसी ने कहा बहन जी ये तो जैसे किसी को फांसी देनी होती है ना, तो गले में वो फंदा डालते हैं। तो हमने कहा कुछ भी समझ लो, याद की फांसी है, क्योंकि यहाँ तो और कुछ करना ही नहीं है, तो बस याद की फांसी। कई बार बाबा कहते उस पर लटके रहो, क्योंकि और कुछ भी बुद्धि में ना आए। लेकिन हम कहेंगे क्यों विजय माला है, क्योंकि यहाँ से विजयी रतन होकर के जाएंगे। तो पहला तो लक्ष्य यही है कि जितना हो सके बिल्कुल मौन में रहना है। अगर बहुत जरूरी भी बात करनी है तो जहाँ 4 शब्दों में काम हो सकता है वहां 2 में निकाले, पर 4 न बोले, ये लक्ष्य रखना है। ये पहला लक्ष्य है मौन। तो देखेंगे इतने सारों के बीच में आप कैसे चमकते हुए सितारे अनुभव होंगे सबको, जो सबको मौन की तरफ आकर्षित करेंगे खुद मौन में रहकर। और फिर बाबा कहते हैं योग केवल दो चार घंटे का नहीं है, लेकिन योगी जीवन है, योगी जीवन है। केवल बैठकर ही योग करने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन चलते फिरते खाते पीते फरिश्ते नजर आए, ये इस योग तपस्या भट्टी का लक्ष्य है। तो कुछ भी करें, भोजन खाएं, चाय पिए, थोड़ा चार धाम की यात्रा करें, लेकिन ऐसे लगे जैसे ये फरिश्ता घूम रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपको रखना है। चार धाम की यात्रा तो रोज करेंगे ही, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, इन चारों धामों में जो ब्रह्मा बाबा की यादगार है, जो और कहीं नहीं मिलेंगे, ज्ञान सरोवर शांतिवन में भी इस प्रकार से नहीं मिलेंगे, सेंटरों पर तो मिलेंगे ही नहीं, वो यहाँ पांडव भवन में जहाँ ब्रह्मा बाबा खुद रहते थे और कैसे इसी पथ पर हर वक्त चलते थे। रहते तो अपने कमरे में थे, लेकिन दिन के समय झोपड़ी में बैठते थे, सवेरे अमृत वेले योग कराने हिस्ट्री हॉल में आते थे, तब तो मेडिटेशन हॉल नहीं था। ये मेडिटेशन हॉल तो 74 में बना, बाबा के अव्यक्त होने के बाद केवल हिस्ट्री हॉल ही था। तो बाबा योग भी कराते थे, अमृत वेले का मुरली भी चलाते थे, वही संदली है जहाँ बाबा बैठते थे, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया है। बाबा का कमरा भी चेंज नहीं किया, इतना है कि वो छोटा था, इसको थोड़ा बड़ा किया है ताकि और भी बैठ सके। और बाबा की झोपड़ी जो बाबा के दिनों में बाबा बनवाते थे, वो तो बहुत सिंपल, खजूर के पेड़ के पत्तों से, ताजे ताजे पत्ते निकलते थे तो उन ताजे पत्तों से बाबा बनवाते थे। और करीब 11 बजे बाबा आकर के, 10-11 बजे बाबा आकर के वहाँ बैठते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे, या किसी से व्यक्तिगत मुलाकात करनी होती थी तो बाबा झोपड़ी में करते थे दिन के समय। और फिर संध्या के समय जहाँ शांति स्तंभ है, वहाँ बाबा बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो एरिया सारा खुला मैदान था। फिर बाबा ने कैसे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनवाया। और दादी जान की अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक दिन बाबा के साथ कैसे वहाँ सैर कर रही थी, खुला मैदान था जहाँ शांति स्तंभ है, तो बाबा ने इनको कहा, बच्ची मैं ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनवा रहा हूँ, जमीन तो थी, और आपको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग सेंटर में टीचर्स बनाने हैं, बहुत सेवा बढ़ेगी, और आपके लिए अलग से यहाँ मकान बनवाता हूँ जो इंद्रप्रस्थ है, ट्रेनिंग सेंटर के सामने वो सब खुला था, यहाँ आपके लिए इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा, आप वहीं रहना और ये ट्रेनिंग देना। तो कब बाबा ने साकार में उनको बोला था और कैसे फिर ट्रेनिंग सेंटर बाबा ने बनवाना शुरू किया, अभी कंप्लीट नहीं था, बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो इसीलिए तो ये चार धाम की यात्रा बच्चे भी करते हैं और ब्रह्मा बाप का अनुभव करते हैं, बाप दादा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, तो आप भी वो ही अनुभव करना। बाबा के कमरे में जैसे माता पिता के रूप में हम बच्चों से बाबा मिल रहे हैं, वो अनुभव करना। और कैसे बाबा की गोद में भी बच्चे जाते थे और महसूस करते थे जैसे छोटे बच्चे बन गए। माँ की गोद में बच्चा जाता है कैसे महसूस करता है, वैसा ही अनुभव हम बाबा के सामने बाबा के कमरे में करते थे, और यही अनुभव आप बाबा के कमरे में करना, और अभी भी वो भासना अवश्य मिलती है। फिर बाबा की झोपड़ी में जाते हैं तो बाबा को सखा रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा से बच्चे दिल की बातें करते थे, व्यक्तिगत थे और कोई नहीं, अकेले बाबा से मिलना होता था तो बाबा से मिलते थे पर जैसे सखा के रूप में, कुछ भी बाबा से पूछना होता था बाबा से पूछते थे। कमरे में तो संगठित रूप में मिलते थे, भले बाबा की गोद में जाते थे लेकिन साथ में थे सभी के, लेकिन इंडिविजुअल किसी को बात करनी होती थी तो बाबा कहते थे बच्चे झोपड़ी में आना, तो बाबा वहां मिलते थे। तो झोपड़ी में बैठेंगे तो ऐसे अनुभव करना जैसे मैं बाबा से दिल की बातें कर रहा हूं, और दिल जाने दिलाराम जाने दिलवर जाने, बस और कोई न जाने और किसी को पता भी नहीं। तो ऐसे दिल की बातें बाबा से करना, और बाबा यही कहते हैं जो कुछ आपके पास परेशानी है जो कुछ है वो बाबा को दे दो, बाबा को सौंप दो। दुनिया में तो गाते हैं गीत, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में हार तुम्हारे हाथ में, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे हार तुम्हारे हाथ में जीत तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में जीत है, हार तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम विजयी रतन हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी सारी जो भी भोजन है सब मुझे दे दो, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। होता है ना जैसे स्टेशन पर जाते हैं बहुत सामान है तो कई बार हम तो कहाँ उठा सकेंगे, तो कुली करते ना, अब वो कुली क्या कहता है दो मेरे को दो, तो एक सिर पर रखेगा कहेगा दूसरा भी रखो फिर तीसरा भी रखो, हम कहेंगे इतना कैसे बोझ उठाएगा, कहते लाओ लाओ इधर भी लाओ इधर भी लाओ, हाँ बीच में भी रखो लाओ लाओ लाओ, और वो ले लेता लेता जाता है, हम डरते हैं कि इसको कितना देंगे हैं, लेकिन वो लेकर के वो भागता जाता है, हम पीछे धीरे 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 और वो आगे चला जाता है तो पीछे दौड़ना पड़ता है उनके, और वो तो इतना सामान लेके भी दौड़ता, अनुभवी है। तो बाबा भी यहाँ खुली तो क्या कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे बाबा कहते सारा बोझ हमें दे दो, बस बाबा अभी आप संभालो, मैं तो आपका हूँ आपकी। बाबा के कमरे में गए, बाबा की गोद में बैठे, बच्चा बन गए, और जो भी जिम्मेदारियां हैं बाबा को झोपड़ी में दे दो। हो सकता है ये अपना बोझ खुद लेंगे अपने सिर पर, नहीं बाबा अभी आपको देखना है, सच्चे दिल से बाबा को कह दिया और फिर हल्के हो जाओ। तो देखो बाबा कैसे हमें सचमुच वो विघ्नों से पार कर लेता है। फिर हिस्ट्री हॉल में बैठना और हिस्ट्री हॉल में अनुभव करना, बाबा एक बेहद का टीचर, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला, तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान देने वाला, कैसे उस संदली पर बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं के लिए बाबा मुरली चलाते थे। उस हिस्ट्री हॉल में बाबा माइक भी नहीं लेते थे, बाबा को माइक बिल्कुल पसंद नहीं था, बाबा कहते थे माइक पर थोड़ी पढ़ाई होती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या माइक लेके पढ़ाते हैं क्या, तो यहाँ भी माइक की कोई जरूरत नहीं, बाबा को बिल्कुल पसंद ही नहीं था ये उनके मुख के सामने हो, लेकिन अभी तो रखना पड़ता क्योंकि कहाँ तक जोर से बोल सकते हैं, हिस्ट्री हॉल में तो फिर भी चलता था तो, लेकिन बाबा की आवाज इतनी बुलंद होती थी, और कई बार तो बहुत थोड़े होते थे, कितने मधुबन निवासी को हर वक्त तो पार्टियां आती नहीं थी, और पार्टियां आएंगी तो भी तो कितने 15-20, क्योंकि और तो इतने मकान तो थे ही नहीं बाहर, जो और मकान है पांडव भवन के बाहर वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो सब बाद में लिए हैं। तो बाबा के सामने थोड़े से ही बच्चे आते थे कि चलो ग्रुप आया, तो कितना हॉल भरता होगा, आधा पौना हॉल भी नहीं, लेकिन बाबा की आवाज इतनी बुलंद होती थी, बाबा तो ऐसे मुरली चलाते थे जैसे पता नहीं कितने होंगे बाबा के सामने, और माइक भी ना, तो इसीलिए बुलंद थी आवाज। तो बाबा से कई पूछते थे, बाबा ये तो इतने थोड़े से बैठे थे पर आपकी आवाज तो खूब तेज थी, मतलब बुलंद थी। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा के आगे तो वो आत्माएं भी है जो भविष्य में आने वाली है, तो बाबा उनको भी याद करके मुरली चलाते। तो इसीलिए कई बार हम कहते हैं जो साकार बाबा के समय थे वो तो चलो कहेंगे मुख वंशावली, लेकिन साकार के में सामने स्थूल रूप में नहीं थे, लेकिन सूक्ष्म में बाबा ने बच्चों का आह्वान किया था कि बच्चे आएंगे। तो बच्चे आएंगे माना संकल्प से रच लिया था पहले से, इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, और कैसे रची, संकल्प से सृष्टि रची, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं। तो इसलिए बाबा तो प्रजापिता बने ब्रह्मा बाबा। तो कैसे बाबा दो सभाओं को भी देखते थे, अभी जैसे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ना कि यहाँ भी एक सभा बाबा के सामने है, और जो सामने नहीं है पर अव्यक्त रूप में बाबा उनको भी देख रहे हैं। तो साकार में भी बाबा ऐसे कहते थे और आह्वान भी करते थे, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे बच्चे। तो देखो अभी कैसे बच्चे आ रहे हैं, ये तो वो कोई सत्संग तो नहीं है जहाँ कथा वार्ता चलती है, तो परिवार है, परिवार का परिवार है, स्कूल का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यज्ञ है, जो कहो ये सब भगवान का रचा हुआ है। इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, और कैसे जब से स्थापना का कार्य शिव बाबा ने 1936 से किया तब से विनाश का भी कार्य शुरू हुआ, दोनों साथ साथ, ब्रह्मा का पाठ और शंकर का पाठ साथ साथ, इसलिए का विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो कैसे ये कार्य भगवान कर रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठ के साकार के द्वारा किया, तो इसलिए जब हिस्ट्री हॉल में बैठे तो बेहद में चले जाना। जैसे बाबा की दृष्टि बेहद में थी, वैसे हम भी ऐसे बेहद में चले जाएं, बाबा से सकाश लेकर सारे विश्व को दो, ताकि सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश मिले। तो टीचर के रूप में बाबा को याद करो, बाबा ने हमें संदेश दिया, हम बाबा के संदेश वाहक बने, मैसेंजर बने, अब सारे विश्व को हमें संदेश देना है, ये बाबा ने हमें कार्य दिया है। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जो बाबा ने आज भी कहा, पढ़ाई ही आधार है, राज ऋषि हो पवित्र हैं, राजाई के लिए पवित्र बन रहे हैं, योगी है राजाई के लिए, पर उसका आधार क्या है, पढ़ाई है? तो मत तो हिस्ट्री हॉल में पढ़ाई याद रहे। फिर शांति स्तंभ पर आओ, शांति स्तंभ पर क्या याद रखेंगे, कौन सा संबंध, शिव बाबा हमारा सतगुरु है, जैसे ब्रह्मा बाबा सतगुरु की आज्ञा पर चले, जो शिव बाबा ने कहा बाबा ने तुरंत उसका फॉलो किया, कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, और कैसे अपनी हड्डियां बाबा के शिव बाबा के कार्य में लगाई, जो अंत तक भी बाबा मुरली चला करके आए। 18 जनवरी 1969 को रात्रि क्लास मुरली चला करके हिस्ट्री हॉल से जैसे उठे ना, दरवाजे तक आए, और दरवाजे पर आकर के करीब 8:45 थे, बाबा मुड़े और सब बच्चे तो हॉल में बैठे ही थे, तो बाबा के आगे 3 अंतिम शब्द कहे, याद है ना कौन से अंतिम शब्द, बच्चे सदा निराकारी निरंकारी और निर्विकारी बनना, अच्छा बच्चों से छुट्टी, बाबा छुट्टी शब्द कभी नहीं कहते थे, नमस्ते गुड नाइट ये कहते थे, पर छुट्टी वैसे भी गुजराती में थोड़ी ऐसे कहते, अच्छा मैं जाता हूँ, क्या कहते हैं, आउजो आउजो माना फिर मिलेंगे, भारत की ये संस्कृति है, फिर मिलेंगे, अच्छा हम आते हैं, कभी नहीं कहेंगे हम जाते हैं, क्या कहते हैं, हम आते हैं, यानी अभी फिर मिलते तो रहेंगे, लेकिन छुट्टी माना गुड बाय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो जैसे बाबा ने विदाई ले ली, और फिर सबसे विदाई लेके छुट्टी कह करके बाबा कमरे में गए, तो मानो कहने का भाव है कि अंत तक बाबा ने अपनी हड्डियां सेवा में गलाई, तो ये साकारी तन भी कैसे केवल अग्नि को सुपुर्द नहीं हुआ, परंतु साथ साथ हड्डियां भी बाबा ने सेवा में दी, वो अनुभव होता है शांति स्तंभ पर। तो जब शांति स्तंभ पर जाएं, तो वहां से क्या प्रेरणा लेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में दी, हमें भी क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने, हमें भी संपूर्ण बनना है। तो लक्ष्य तो ये है, लेकिन साथ साथ उद्देश्य है कि हमको संपूर्ण बनना है, और मधुबन वो स्थान है जहां इतनी शक्ति भर सकते हैं। यहाँ माउंट आबू में मैं कई बार मिसाल देती हूँ, ये माउंट आबू में यहाँ CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, यहाँ पर आर्मी है, ये सब के यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स है, आर्मी के भी और CRPF के भी, तो यहाँ इनके पीस कैंप्स होते हैं, माना जब उनको ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, तो जब भी आते हैं ये लोग, तीन तीन मास में इनकी ट्रेनिंग चलती है, फिर दूसरे आते हैं, वो फिर जाते हैं फील्ड में, तो ट्रेनिंग लेते रहते हैं, और ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, ताकि जब फिर से मैदान में जाए तो ट्रेंड होकर के जाए, यहाँ उनको इनके लिए शांति है, यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है ना, किसी का कोई यहाँ विरोधी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर जहाँ मैदान में जाएंगे वहां तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो पुलिस को देखना पड़ता है, आर्मी को देखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ उनके लिए ये शांति का स्थान है, ट्रेनिंग का स्थान है माउंट आबू में, क्योंकि यहाँ माउंट आबू में कभी कुछ वारदात नहीं होती है, कभी नहीं सुना, सचमुच बाबा ने कैसा सुंदर स्थान चुना है माउंट आबू। जब शुरू शुरू में माउंट आबू में आए तो वातावरण तो कुछ और ही था, केवल 3 महीना ही यहाँ आते थे जो राजे महाराजे लोग, जो राजस्थान के थे, सौराष्ट्र के भी थे, हाँ उनके यहाँ महल है, ये सामने आप देखेंगे लिमड़ी हाउस है, वो सौराष्ट्र में है ना लिमड़ी, तो वहाँ उनका लिमड़ी हाउस है, तो वहाँ का भी महाराजा आता था, और राजस्थान के ये जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 3 मास यहाँ आके गर्मियों में ये राजा महाराजा अपने सारी बटालियन को सबको ले आते थे। तो भरतपुर राजा के का महल है, बीकानेर राजा का महल है, जयपुर जोधपुर सिरोही सारे महल है यहाँ, और अप्रैल में जून यहाँ रहते थे, तो समर कैपिटल इन सब राजाओं का यहाँ माउंट आबू था। और पहले उसके जब आते थे तो ये रोड भी नहीं था, ये तो अंग्रेजों ने बनाया रोड, वो तो अपने हाथी घोड़ों पर चढ़ करके पहाड़ चढ़ के आते थे यहाँ, इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना तो वहाँ सबसे पहला जो कमरा है उसमें हाथी और घोड़े हैं, तो ये भी एक यादगार है कि हाथी घोड़ों पर, हाथियों घोड़ों पर कैसे ये संगमरमर के जो मार्बल के पीसेस लाए होंगे नीचे से, तो वह यहाँ के गर्मियों में रहते थे, तो केवल 3 मास ही यहाँ बस्ती होती थी, अप्रैल मई जून बस, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मास इतनी बारिश जो अभी आप देख रहे हो, बहुत समय के बाद ये फिर हुआ, क्योंकि धीरे धीरे बारिश कम होती गई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बारिश होती थी, कोई नहीं रहता था माउंट आबू में। और फिर अक्टूबर से ठंडी चालू होती थी, इतनी ठंडी जो बात मत पूछो। और देखो बाबा कैसे ठंडी में, बाबा को डॉक्टर कहते थे यहाँ मत रहो, तो बाबा दिसंबर जनवरी फरवरी अधिकतर 3 महीना मुंबई में रहते थे, क्योंकि मुंबई में बहुत सर्दी भी नहीं पड़ती है, बहुत गर्मी भी नहीं है, माना जैसे कि हर समय एक जैसा ही मौसम है। हम तो मुंबई के हैं तो कभी वहाँ एक बार भी स्वेटर नहीं पहना, ये तो माउंट आबू में सीखा स्वेटर पहनना, शॉल पहनना, क्योंकि यहाँ ठंडी थी। तो बाबा अक्सर करके मुंबई में रहते थे दिसंबर जनवरी फरवरी। लेकिन बाबा ने कैसे 69 में शिव बाबा ने उनको कहा बच्चे अभी कहीं नहीं जाना है, ये भी एक कहानी है। तो कहने का भाव है कि बहुत ठंडी थी तो इसीलिए माउंट आबू ये कैसे चुना। परंतु जब माउंट आबू में कराची से आए यहाँ आके बसे तो बाबा को कई कहते थे बाबा ये कैसा स्थान चुना है, तो बाबा कहते थे बच्चे एक दिन आएगा सारी दुनिया यहाँ आएगी, सारी दुनिया यहाँ आएगी। तो देखो अभी वो समय आ गया है, सारी दुनिया आएगी। तो देखो हम कैसे मधुबन में हैं, सारी दुनिया यहाँ आती है। मैं छोटा सा अपना अनुभव सुनाऊं, बताया कि विदेश में मैं रही, अफ्रीका मॉरिशियस 2 साल, और फिर 76 में जब मैं मधुबन आई तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि यहाँ पर योग भवन बनना शुरू हुआ था, योग भवन बना था पांडव भवन के बाहर। तो यही लक्ष्य था कि यहाँ पर ऐसे VIPs को मंगाएंगे और यहाँ उनके लिए स्पेशल योग शिविर हो, इसलिए मुझे ना विदेश की सेवा का भी अनुभव था और विदेशी भी आना शुरू हो गए थे, क्योंकि विदेशों में भी सेवाएं सेंटर्स खुल गए थे तो वो भी यहाँ आते थे, तो कैसे उनके लिए उनको संभालने वाला, क्लासेस कराने वाला और योग शिविर के लिए। तो दोनों में अनुभवी थी कि वहाँ भी हम अफ्रीका में मॉरिशस में हमने बहुत कराया। तो बाद दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तो कैसे मधुबन में तो बहुत सेवा थी। तो एक दिन मैं बाप दादा से मिल रही थी, ये मेडिटेशन हॉल 74 में बना, तो इसी स्थान पर हम बाप दादा से मिल रहे थे। तो बाप दादा ने मेरे से प्रश्न किया, क्योंकि उस समय तो व्यक्तिगत मिलते थे ना, बाबा ने मेरे से प्रश्न किया तुम कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ, और क्या ज्ञान गंगा ही है हम सब। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा ही तो सब है, जो भी ज्ञान सुनाते हैं सेवा केंद्रों पर रहते हैं सब ज्ञान गंगाएं हैं, तुम कौन सी विशेष गंगा हो। नहीं, पहले कहा कि ज्ञान गंगाएं तो सब है पर तुम कौन सी गंगा हो। तो फिर मैंने कहा अभी ज्ञान गंगा के अलावा दूसरी कौन सी गंगा होगी, तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है बहने, क्योंकि वो तो बहती रहती है, आज इस सेंटर पर कल उस सेंटर पर परसों दूसरे सेंटर पर, एक सेंटर पर स्थित नहीं होती है। और जो भगत होते हैं वो तो अपनी जगह ही होते हैं, वो थोड़ी बदलते हैं, पर गंगा तो बहती जाती है। तो जो सेवा केंद्रों पर बहने रहती है वो तो सेंटर बदलती रहती है यानी, और जो स्टूडेंट्स है वो तो वहीं के होते हैं, तो इसीलिए बहती गंगा जो है वो तो सेंटरों पर रहती है, तुम कौन सी गंगा हो। अब तीसरी गंगा तो मुझे आई नहीं, और कौन सी गंगा होती है। तो फिर बाबा ने मुझे उसी समय कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना, देखा है हर की पौड़ी, गए ना हरिद्वार, तो वो जो हर की पौड़ी है वहाँ पहाड़ों से जो पानी आता है और वो जैसे वो तलहटी तक पहुँचता है, माना ग्राउंड तक पहुँचता है, वो जो स्थान है सारी जड़ी बूटियाँ का वो लेकर के, सारा सार लेकर के वो पानी नीचे पहुंचता है, फिर मानो ऋषिकेश ये सब पार करता हुआ हरिद्वार में वो हर की पौड़ी पर पहुंचता है। और कैसे वहाँ सारी दुनिया जाती है ना, जब मेला लगता है और हर की पौड़ी का ही जो जल है उसी को ही गंगा जल मान करके वो रखते वो खराब नहीं होता है, क्योंकि वहां भी जो जड़ी बूटियां हैं ना वो उस पानी को बहुत ही साफ रखती है और बहुत शक्तिशाली होता है वो पानी। तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो और सारी दुनिया तुम्हारे में यहाँ नहाएगी, ये बाबा ने उस समय मुझे कहा था ना? तो मैं तो भी सुनी रही थी और मैं क्या कहती, लेकिन ये बाबा ने कैसे सब भविष्य देखा। तो अभी भी जो भी आते हैं अधिकतर उनसे हमारा मिलना तो होता ही है, तो इसीलिए बाबा ने ये वरदान दिया उसी समय। तो कहने का भाव है कि कैसे ये मधुबन वो स्थान है जहाँ सारी दुनिया आती है। और फिर ये भी मैं आपको बताऊं, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा से पूछा गया कि बाबा मधुबन में क्या सेवाएं करें और कौन आएंगे मधुबन, क्योंकि बाबा जब थे तो मधुबन में बाबा के कारण आते थे, मम्मा बाबा और दादियों को तो बाबा मधुबन में रखते ही नहीं थे, सब सेवा केंद्रों पर रहते थे। बाबा केवल यहाँ 15-20 भाइयों को रखते थे ताकि जो काम कारोबार है फिजिकल वर्क स्थूल कारोबार वो करते थे। और बाबा कहते थे बहनों के लिए तो सेवा केंद्र है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अभी तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो अभी क्यों कौन आएंगे मधुबन, परंतु बाबा ने सब दादियों को मधुबन में बुला लिया था अव्यक्त बाप दादा ने। और जब यहाँ आए तो बाबा से पूछा दादी जी ने कि अभी यहाँ पर क्या होगा, तो बाबा ने कहा यहाँ पर ट्रेनिंग चालू करो कुमारियों की, कुमारों की, माताओं की, बहनों की, युगलों की भट्टी ये चलाओ, और यहाँ पर भी बच्चे बहुत आएंगे और मकान बनाने पड़ेंगे, ये भी बाबा ने कहा, तो यहाँ भट्टियां शुरू करो। तो जो पहली कुमारियों की भट्टी 1969 में जो हुई अप्रैल मई में भट्टी हुई, बाबा अव्यक्त हुए जनवरी में, तब तक वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, बाकी थोड़ा था वो जल्दी पूरा कर दिया था। तो वहाँ हम लोग करीब, मैं भी थी उस ट्रेनिंग में, 30 कुमारियाँ थी जो कॉलेज पढ़ करके वहाँ ट्रेनिंग यानी मधुबन में ट्रेनिंग करने आई थी, जिसमें आशा बहन पांडव भवन दिल्ली की, आरती बहन इंदौर की और चंद्रिका बहन अहमदाबाद, ये हम सब थे। तो जब एक मास की ट्रेनिंग थी हमारी, और उसके बाद जब एक मास लगभग पूरा होने पर था तो बाबा ने कहा बच्चों को नंबर देंगे, एक मास की थियोरेटिकल ट्रेनिंग थी, फिर बाबा ने कहा उनको नंबर मिलेंगे जो अभी एक मास के लिए पहले सेवा केंद्र पर जाए, अभी तो थियोरी किया फिर प्रैक्टिकल करने सेवा केंद्रों पर जाओ। अभी हम सब कॉलेज से आई थी, मैंने भी बीएससी पूरी की थी 69 में और अप्रैल में एग्जाम्स थे, मई में या मार्च एग्जाम्स अप्रैल थे, मतलब अप्रैल एंड में आ गए थे हम लोग। तो एक मास की ट्रेनिंग की और अभी बाबा ने कहा एक मास आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाना है। तो अभी मेरा नंबर आया, मैं कहाँ जाऊंगी, तो मेरा तो उसी समय हमारी भारती बहन राजकोट की, वो वहीं थी मधुबन में, तो मैंने कहा मैं भारती बहन के पास राजकोट जाऊंगी। तो उसी वक्त भारती बहन ने मुझे चुन लिया 69 में, और मैं भारती बहन के साथ राजकोट आई थी। मैं समझती हूँ जून जुलाई का महीना था, उसी समय ये नलनी जून मास था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई और बाबा ने कहा एक मास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने हर एक को जाना है सेंटर पर। तो मैंने भी संकल्प किया कि मैं भी जाऊंगी, तो भारती बहन के साथ मैं राजकोट आई थी। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 मास राजकोट में रही, मुझे याद है 4, और शुरुआत थी तब, उसके पहले सेंटर नहीं था, शुरू किया सेंटर राजकोट में भारती बहन के साथ। तो देखो बीज कैसे राजकोट का पड़ा उसी समय, और उसी समय ये नन्ही और कौन दूसरे आपकी बहन वीरबाला, ये दोनों राजकोट के पहले फूल, और हमारे कौन थे जो आइसक्रीम बेचते थे क्या वो कौन जो क्या मूल जी भाई, हाँ मूल जी भाई, तो मूल जी भाई और भी कई थे जो उस समय राजकोट में कैसे उन्होंने ज्ञान लिया, तो इसीलिए मेरी सेवा का जो फाउंडेशन पड़ा वो राजकोट से पड़ा तो इसलिए मुझे, क्योंकि मुझे याद है जब राजकोट में थी वो कॉलेज में हम गए थे भाषण करने, राजकुमार कॉलेज वहाँ का निमंत्रण, इसलिए मुझे याद था राजकुमार कॉलेज है जी। राष्ट्रीय शाला में तो वो तो शिविर कराई थी, वो बहुत बहुत सेवाएं हुई थी जी। उस समय के कोई है 69 के कोई है इसमें? केवल वीर बाला बहन, केवल नल्ली बहन 69 में, उस समय जी 69 माना कितने साल हो गए, 47 साल। तो खैर कोई बात नहीं, तो उस समय शुरुआत थी सेवा, बहुत अच्छी सेवा थी उस समय। फिर तो मुंबई आना हुआ वापस, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम देके मैं आ गई थी मधुबन। अब कॉलेज का बहुत कारोबार होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है, मार्कशीट लेना होता है, हम लोगों के रिजल्ट भी यहीं पता चली कि हम पास हो गए सब जो भी आए थे, बस एग्जाम देके सीधा मधुबन आए थे। तो कहने का भाव है कि कैसे ये हम, आप जब शुरू में आए तो लोगों को लगा यहाँ क्या होगा, पर कैसे बाबा ने सारे विश्व को यहाँ बुलाया है। और ये हालांकि अभी तक तो मधुबन में जुलाई अगस्त सितंबर में कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, इतनी बारिश होती थी कौन प्रोग्राम यहाँ रखेंगे। मैं भी बाहर जाती थी, 3-3 महीना सेवा पर जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ बठिया है तो हमको भी बंधना पड़ा है नहीं तो अधिकतर हम जुलाई अगस्त में कभी मधुबन में नहीं होते थे। तारी जी भेजते थे विदेश में भी, मैं 3-3 महीना सेवा पर जाती थी, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में भी गई, तो इसलिए इसी प्रकार बहुत सेवा होती थी। और विदेशी आते थे फिर निमंत्रण देते थे। खैर तो ये लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उद्देश्य हमारा क्या है कि हमको बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई उदाहरण नहीं था, शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने तुरंत उसको अपनाया, श्रीमत का पालन तुरंत किया। बाबा ने बिल्कुल नहीं सोचा, शिव बाबा कहते तो हैं लेकिन ये कैसे होगा, कैसे होगा ये कभी नहीं सोचा। शिव बाबा ने कहा और किया, और दादियों ने फिर ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था जिनको ब्रह्मा बाबा फॉलो करे, कोई भी नहीं था। तो इसीलिए शिव बाबा से डायरेक्ट कैसे श्रीमत उसको एक सेकंड में, जो बाबा ने कहा जी हुजूर, भले कितने भी कलंक लगे, कितनी भी ग्लानी हुई, क्या नहीं हुआ, बाबा के आगे बातें आई, लेकिन ये किसका कार्य है, ये भगवान का कार्य है। और एक धक से बाबा कैसे न्यारे बन गए, और इतना जल्दी 33 वर्ष 36 से लेकर 69 33 वर्षों में बाबा कैसे अव्यक्त बने। बाबा के लास्ट 6 मास तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बाबा फरिश्ता ही थे। बाबा को देखते थे तो ऐसे लगता था कि ये कोई हड्डी मांस वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो लाइट वाला, लाइट के आकार में है। बाबा चलते थे तो भी ऐसे बिल्कुल महसूस होता था कि बस हम तो बाबा के मस्तक पर देख रहे, इतनी ललाट चमकता था बाबा का। पहले तो शिव बाबा की प्रवेशता होती थी पता चलता था, क्योंकि मैं तो ज्ञान में 1959 से हूँ, 59 दिसंबर में मैं ज्ञान में आई, और बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, 69 में, तो मैं 59 में आई थी, और 69 10 साल बाबा बॉम्बे आते थे तो मैं तो स्कूल जाती थी, और पहले मुरली सुनने जाती थी फिर स्कूल जाती थी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में। तो बाबा कितना प्यार करते थे, मैं बाबा को देखती रहती थी कैसे बाबा इतने नशे में हैं, और शिव बाबा की प्रवेशता होती थी पता चल जाता था बिल्कुल, जैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे तो पता चलता ना, जब तक वैसे बाबा से पता चलता था, ये मस्तक एकदम जैसे चमकने लगता था। लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त स्थिति के नजदीक आते गए संपूर्णता के, तो अंतर खत्म हो गया। जैसे अभी हम गुलजार दादी में देखते हैं, पहले पता चलता था कि बाप दादा, अभी पता ही नहीं चलता बाप दादा आए हैं, क्योंकि जैसे कि दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं ऐसे लगता है। और जब बाप दादा जाते तो भी जैसे दादी की दृष्टि वो बाप दादा की दृष्टि लगती है, वाणी में भी कोई माना पहले तो क्या वाणी, इसलिए क्योंकि दादी जी की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है, और वो झटका आता था, अभी वो भी नहीं। जैसे बाबा भी थोड़ा ताकि शरीर को भी कुछ ज्यादा कष्ट भी न हो, आवाज में भी, क्योंकि फोर्स का आवाज होगा, क्योंकि वो तो विस्पर है, जो बाबा का अव्यक्त आवाज है वो तो केवल होंठ हिलने का है, और माइक्रोफोन रखते हैं तो वो आवाज जैसे फटता है, लेकिन ताकि आवाज को भी तकलीफ न मिले तो नॉर्मल आवाज, और वो पता भी न चले, वो झटका भी न लगे, तो ये सब। और वैसे ही देखो दादी को, जब देखो तो जैसे दादी नहीं देख रहे हैं, लेकिन कौन है ये, हाँ जैसे बाप दादा है, दादी माना गुलजार दादी माना बाप दादा, क्योंकि जैसे बाबा है ही है ऐसे अनुभव होता था बाप दादा। तो ब्रह्मा बाबा में भी लास्ट में वो अंतर का पता नहीं चलता था। हम दादी जी को भी देखते थे, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, कैसे लास्ट के दिनों में दादी, कई बार बातें सोचते थे दादी को, ये बताएंगे, ये बताएंगे, पूछेंगे, ये करेंगे, बहुत बातें थी मन में। लेकिन जैसे दादी के सामने आते थे ना, और दादी इतनी पावरफुल दृष्टि देती थी, सब भूल जाता था, सब कुछ भी जो भी होता था सब भूल जाता था। तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी ऐसा ही था, लास्ट दिनों में पता चलता था कि बाबा जैसे अभी न्यारे होते जा रहे। बाबा के सामने ज्यादा बोल नहीं सकते थे, आवाज भी नहीं ज्यादा निकाल सकते थे, क्योंकि बाबा बिल्कुल जैसे अव्यक्त होते गए होते गए। लास्ट के जो कुछ महीने थे जिसमें बाबा की जो मुरलियां चलती थी, उसमें बाबा कहते थे बच्चे तुमको टावर ऑफ पीस बनना है, टावर ऑफ पीस, हाँ सारे विश्व को सकाश देनी है। बाबा खड़े हो जाते थे और सबको दृष्टि देते थे, और एकदम जैसे बाबा यहाँ है या नहीं है पता भी नहीं चलता था, बिल्कुल न्यारे हो जाते थे। ऐसे लगता था बाबा से बात न करे, बस दृष्टि ले, दृष्टि ले, बस इतना ही, यही अनुभव होता था साकार बाबा से। और कैसे बाबा संपूर्ण बने और अव्यक्त बने, तो बाबा को एक ही लक्ष्य था, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे घर जाना है। हाँ बाबा कहते घर जाना है, तो कैसे बाबा ने उस उद्देश्य को पूरा किया। लेकिन अभी बाबा परम धाम तो गए नहीं है, वतन में है, और वतन में हम सबका इंतजार कर रहे हैं, बच्चों से मिलने आते हैं। किस लिए आते हैं, ताकि बच्चे भी संपूर्ण बने, बाप समान बने और घर चले, ताकि मिल करके परम धाम के गेट खोलें, फिर नई दुनिया के भी तो गेट खोलने हैं साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा तो नहीं आएंगे सत्ययुग में, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो आएंगी ना, उनके साथ करें। अभी भी कई बार बाप दादा की आपस में रूरिहान चलती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बन गए और इंतजार कर रहे हैं हम बच्चों का। तो शिव बाबा को कई बार ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बच्चे, बाबा अभी तक बच्चे देरी क्यों कर रहे हैं, इतनी देरी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों नहीं संपूर्ण बन रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी बन गए क्योंकि लक्ष्य था ना, उद्देश्य था, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। लेकिन फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत देते, आथत क्या देते, बच्चे ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट हो रहा है जैसे कल्प पहले हुआ था। तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी, जो करना है अभी करना है, जल्दी करना है। कई बार बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे, बच्चे ये काम करना है, और बच्चे ढीले ढाले, तो बाबा पत्र लिखते थे, बच्चे अभी तक बेबी बुद्धि बनी है क्या? अभी तक बाबा ने का जो कहा वो कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? तो बाबा उनको कहते बेबी बुद्धि, बच्चे होते हैं ना, नखरे करते हैं, थोड़ा आनाकानी करते हैं, थोड़ा बहाने देते हैं, तो बाबा ये हो गया, बारिश आ गई, बाबा फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जगदीश भाई अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमारे हम तीन भाई थे, कैसे बाबा ने हम लोगों को शाम को कुछ कार्य दिया एक पैम्फलेट बनाने के लिए, तो तीनों को कहा कि आप इसका मैटर बना के ले आओ, तो कल बाबा देखेंगे और ये पर्चा बनाना है। तो अभी तीनों को कार्य दिया, अपने अपने ढंग से बनाओ, तो जैसे सोचा रात को करेंगे, अब रात को क्या करेंगे, बिजली चली गई, या तो जनरेटर तो उस समय था नहीं, तो बिजली चली गई, अब जो दो दूसरे थे वो तो सो गए, बिजली तो है नहीं, अभी क्या करेंगे। लेकिन जगदीश भाई को बुद्धि में था, बाबा ने कहा सवेरे बाबा मांगेंगे और बिजली नहीं है तो क्या करूं, तो क्या किया, वो बाहर गए और स्ट्रीट लाइट, नहीं बहुत अच्छा अपना अनुभव सुना, स्ट्रीट लाइट जो वो तो जल रही थी, मधुबन में लाइट नहीं थी, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पैम्फलेट का मैटर लिखा। और सवेरे जब बाबा ने पूछा, पहले उनसे पूछा, उन्होंने कहा बाबा कल तो लाइट ही नहीं थी तो बहाना मिल गया ना न लिखने का, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, ये बोलो तो ना अभी कुछ करना, लाइट चली गई तो क्या करेंगे हम लोग, अरे अभी तो चलो टॉर्च है फलाना ये है, पर कुछ ना हो तो बैठ जाएंगे जब तक लाइट आए, और क्या सो जाएंगे। तो वो तो सो गए, तो जगदीश भाई तो लेकर आया, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे लाए आप, कब कैसे लिखा, बिजली तो थी नहीं। तो उसने कहा बाबा मैं कैसे, स्ट्रीट रास्ते की लाइट थी वहां जाकर के ये लिखा, क्योंकि सवेरे बाबा पूछने वाले। तो बाबा ने उसी समय जगदीश भाई को वरदान दिया कि बच्चे आप इस विश्वविद्यालय का पूरा जो भी किताबें हैं ना वो आप लिखेंगे, उसके पहले नहीं, वो तो उसी समय आया। तो देखो ये बाबा ने उसको वरदान दिया, और उसके बाद सारी जो किताबें हैं वो सब जगदीश भाई की लिखत है। तो ये वरदान था बाबा का उनको, क्योंकि बाबा का आज्ञा, बाबा ने बाबा की आज्ञा उसने पालन की। तो कहने का भाव है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने भी जो शिव बाबा ने कहा तुरंत बाबा करते थे, इसीलिए संपूर्णता को प्राप्त हुए। तो अभी आपको भी यही लक्ष्य उद्देश्य रखना है कि भट्ठी में आए हैं और कुछ भी बुद्धि में न हो, बस अपने अंदर भरना है, भरपूर करना है। और भट्ठी माना परिवर्तन, अग्नि में कोई चीज पड़ती है तो क्या होता है, वो चीज वापस उसी रूप से बाहर नहीं निकलती है, बदल के निकलती है, परिवर्तन। तो इस भट्ठी में आप आए हो, इस तीन दिनों में एकदम ऐसे बदल जाओ, जो कल की मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा कि तोड़ना, क्या तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, तो तोड़ना था, क्या था, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो तोड़ना क्या है, जो भी देह के पुराने कर्म बंधन हिसाब किताब यहाँ कुछ याद नहीं आने चाहिए, कुछ भी याद नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ, सबके मोबाइल स्विच ऑफ है कि किसी का वो भी पॉकेट में है, पर्स में है, स्विच ऑफ कर दिया, घर में सबको बता दिया कि हम पहुंच गए आराम से, अभी तीन दिन हमको कोई फोन ना करे, कि फिर भी करेंगे आपको फोन, घर में बच्चे करेंगे क्या, पोते नाते दात धोते तो तीन दिन बिल्कुल कॉन्टेक्ट खत्म, दुनिया से कुछ भी न, समाचार की लेन देन, संसारी बातें कुछ नहीं, तीन दिन ये आपको लक्ष्य रखना। इसलिए मोबाइल भी सब स्विच ऑफ कर दो, पहले से इन्फॉर्म कर दो घर में कि तीन दिन मुझे कोई फोन न करे, मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं, स्विच ऑफ करके रखना, यहाँ हमारी भट्टी चल रही है। तो पहली बात तो ये, तो इसीलिए पहला तो ये करना है, क्योंकि बदलना है ना, तो इसलिए देह से देह के सब संबंधों को भूलना है। मोबाइल याद होगा तो संबंध याद आएंगे, वो फोन आएगा उसका तो ये होगा, या ये फलाने को ये काम दिया है, पता नहीं किया या नहीं किया, फोन करके पूछो तो सही, ये सब कुछ नहीं हो सकता ऐसे कि कुछ नहीं, दुनिया की बातें संसार की बातें, लौकिक बातें, परिवार की बातें, यहाँ एक अलौकिक संगठन में आप आए हो, तो ये सब तोड़ना है। और फिर मोड़ना क्या है, हाँ, जो भी हमारे पुराने संस्कार है यहाँ सब बदलने हैं। आग में चीज पड़ती है तो बदल जाती है, गत्त चीज कठोर चीज होती है वो नरम हो जाती है, और नरम चीज स्ट्रांग मजबूत हो जाती है। काला कोयला रंग बदल देता है, सोना शुद्ध हो जाता है, ये सब परिवर्तन होता है अग्नि में। तो मैं आत्मा भी सच्चा सोना हूँ, शुद्ध सोना हूँ, तो जो भी पुराने संस्कार है सब गल जाए, सच्चा सोना बनूं। तो इतना ऊंचा उद्देश्य बाबा ने हमें दिया है। अब इस 3 दिन में कितना कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के समय नहीं मिलना है, आगे चल के देना ही होगा। तो ये जैसे बताया ना माउंट आबू ट्रेनिंग पीरियड है, तो ये भी आपके लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग है, क्योंकि और बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, पर इतनी शक्ति आपकी भरी हुई होगी ना, तो वो शक्ति आपको वहां काम आएगी। ऐसे भी कोई न सोचे कि चलो यहाँ तो मैं शक्ति भर रहा हूँ, पर पता नहीं वहां जाऊंगा तो मैं उस परिस्थिति का सामना कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति भरना बस यही सोचना है। अगर ये सोचेंगे वहां ये कर सकूंगा नहीं कर सकूं, तो यहां भी शक्ति कहां भरोगे, वही याद आएगा, वही सोचेंगे। इसीलिए यहां इतनी शक्ति में भर दूं जो कहीं भी जाऊं मैं तैयार हूं परिस्थिति का सामना करने के लिए। वो परिस्थिति को याद नहीं करना है, लेकिन बाबा को सच्चा साथी बना करके सर्व संबंधों से उनको याद करना है, उनसे शक्ति लेनी है। तो तोड़ना भी है, मोड़ना भी है और जोड़ना भी है, ये 3 काम आपको इस भट्टी में करना है, ताकि आत्मा संपूर्णता के निकट पहुंच जाए। और अमृत वेले विशेष ये लक्ष्य रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बस। रात को गुड नाइट किया, बाबा की गोद में सो गए, अमृत वेले पहला संकल्प यही, बाबा गुड मॉर्निंग। जैसे बाबा की गोद से जागे हैं और बाबा को ही देख रहे हैं और कोई आत्मा की याद ना आए, तो देखो चाहे कितनी भी बारिश होगी पर आपका अमृत वेला भी इतना पावरफुल होगा। ठीक है, अब हमारे बीच ही आ गए हैं सतीश भाई, और बहुत सुंदर स्वागत गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप आए हो तो आपके स्वागत में गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था सुनते सुनते, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अलौकिक माता पिता हमारे साथ हैं। नहीं लगता आपको? लग रहा ना? तो हमको शिलू दीदी उन दिनों में ले गए जब अलौकिक बाबा और अलौकिक मम्मा माँ, जिन्होंने कैसे उन दिनों में साकार में पालना की, और आज भी अव्यक्त सो साकार में पालना कर रही हैं, ऐसा ही महसूस होता है यहाँ मधुबन की वादियों में आकर के। तो एक बहुत पुराना हमारा एक कुमारी थी, हमसे बहुत बड़ी हुआ करती थी वो, दिल्ली में, दिल्ली शाहदरा सेंटर की, उन दिनों में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, प्रेम बहन। हाँ, एक अलौकिक बाबा एक थी माँ रूहानी, उन दोनों के प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। तो मैं कहूंगी एक अलौकिक बाबा एक थी माँ रूहानी, उन दोनों के प्यार की सुनाई आज कहानी। तो इसलिए आप लोगों की दिनचर्या में है 4 धाम की यात्रा, स्व चेकिंग। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने बैठ करके लिखो तो सत्य लिखा जाएगा, और जैसे दीदी ने सुनाया कि चारों धामों में कैसे कहां किस संबंध से याद करो ने? तो संग संग हमारे माता पिता हैं, तो आप एक अलौकिक एटमॉस्फेयर में हो, अलौकिक वातावरण में हो, तो संग संग रखेंगे। जैसे उंगली पकड़ करके बाबा के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें हाथ बाबा का छोड़ना नहीं है। कितनी उंगलियां हैं बाबा की? ढेर उंगलियां हैं, ढेर हाथ हैं, सबका बाबा हाथ पकड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन दिनों में, उन अनुभवों में ले जाने के लिए। श्री बहन का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। संबंध है, संबंध है ना, तो वो बोला संबंध, सेवा का बीज आपका वहां ही पड़ा, तो वो एक संबंध बड़ा निराला और प्यारा होता है। ये तो जो अनुभव करता है ना उसको पता होता है। आप सब भी काफी अनुभवी हैं, लेकिन बट नेचुरल हमसे तो ज्यादा ही आप अनुभवी हैं, तो आपने अपने अनुभव युक्त जो बोल कहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। मैं समझती हूँ आगे भी अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम आपका लाभ लेंगे, और क्योंकि उद्घाटन दिन है, स्वागत दिन कह लो, तो पहले स्वागत तिलक से हुआ, फिर दीदी ने उद्देश्य और लक्ष्य बता करके हम सबको इस मौन तपस्या भट्टी से अवगत कराया, और अभी स्वागत संगीत के द्वारा, कविता के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा जो 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 हील करते हैं। संगीत भी ना हील करता है, आत्मा में जो कुछ खराबी हो गई ना, बीमारी को, वैसे शरीर की बीमारी को भी संगीत हील करता है, म्यूजिक थेरेपी भी होती है। तो ये हमारे यहाँ भी मेडिटेशन के पीछे जो म्यूजिक बजता है वो भी एक थेरेपी है वास्तव में ना। और जब हम शब्दों में जाते हैं तो शब्द हमें बाबा से जोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया के बाहरी वातावरण से हम आए हुए होते हैं, तो उनमें जो वो प्राण डालता है, जो गीत बनता है, इसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, इसका बेस होता है लिरिसिस्ट, जो गीत लिखता है, जो कविता लिखता है। और जो कविता जब लिखता है तो उसके पास शब्दावली चाहिए, शब्द चाहिए, और बाबा के शब्द और कविता की फॉर्म में कहना ये आसान नहीं होता है। तो हमारे सतीश भाई के पास ये बड़ी सुंदर कला है। वैसे तो हमारे कई भाई हैं जो इस तरह से, कई बहनें भी हैं जो लिखते रहे हैं, लेकिन सतीश भाई के साथ काफी गीत और संगीत बनाने का मौका मुझे भी मिला है। मैं समझती हूँ दस एक ऐसी सीरीज, उन दिनों में एक कैसेट, कैसेट्स बनती थी एक कैसेट में 12 गीत बनाते थे, 12 गीत बनते थे, तो मेहनत होती थी। और सतीश भाई लिखते थे, एक दो भाई और भी थे, पर मैक्सिमम गीत सतीश भाई के होते थे। और उनके पास इतनी वोकैबुलरी है, मतलब बहुत ही सुंदर वोकैबुलरी है उनकी, मुझे सदा से वोकैबुलरी पसंद आती है। अच्छे शब्दों से बाबा की बातों को लोगों के सामने रखना, फिर उसको म्यूजिक देने वाला, फिर उसको गाने वाला, फिर उसको रिकॉर्ड कराने वाला, फिर तो बहुत सारी है, लेकिन बेस है ना, मैं समझती हूँ लिरिसिस्ट तैयार करता है। तो और ये एक सौभाग्य है, यहाँ हम मधुबन में जब भी आते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो मधुर वाणी ग्रुप हमें मिलता ही मिलता है, और कोई मिले ना मिले, है ना, तो हर ग्रुप में मधुर वाणी ग्रुप तो है ही है। तो हाँ, मधुबन का है, बिल्कुल बिल्कुल मधुबन का ही ग्रुप है। तो सतीश भाई और उनके साथी हमेशा, निरंजन भाई और हल्दर भाई ना, अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा देते हैं निरंजन भाई, हल्दर भाई और सतीश भाई। आप मधुबन में ही रहते हैं, पहले मुझे पता है आप भोजन डिपार्टमेंट में, किचन में हुआ करते थे, अभी भी बनाते हैं खाना, अच्छा, सब सेवाएं करते हैं, तो खाना बनाते थे कुछ, किसी को शायद जो सिख लोग होते थे, दादियों का भी बनाते थे खाना। और कैसे उनकी कला निखरती गई निखरती गई, मैंने वो मेरी आंखों से देखा है। और पता नहीं कितने गीत लिखे होंगे, कितनी गिनती है उनकी, तो अभी तो गाते भी हैं, उसका कुछ संगीत भी देते हैं और लिखते भी रहते हैं। और बाबा के नए नए बच्चे आकर के जब इन गीतों को गाते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े कलाकारों ने गीत गाए हैं, आशा भोसले ने गाए हैं, कुमार शानू ने गाए हैं, सोनू निगम ने गाए हैं, अलका याग्निक ने गाए हैं, साधना सरगम ने गाए, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने सब गीत गाए हैं, तो सब लोग खुश होते हैं इन गीतों को गा करके। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या है, ये कौन से शब्द हैं, तो उनको अच्छा लगता है और इन गीतों को गाते हैं। तो तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में आपका लिखा हुआ है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, वो आपका लिखा हुआ है। हाँ, बस वो तो सुनते रहते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके लिखे हुए गीत हैं, तो अभी उनकी भी हमेशा दिल होती है कि मैं जो भी बाबा के घर में आए तो मैं शब्दों से, गीतों से, संगीत से सबका स्वागत करूं। तो मैं निवेदन करती हूं सतीश भाई से और उनके साथियों से, मधुर वाणी ग्रुप से, कि आप आए और गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा आप सभी का स्वागत करें। आइए।